नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जोरों से चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में नाम वापसी का कल अंतिम दिन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा, वोट का बहिष्कार करने वाले क्षेत्रों में दोबारा मतदान नहीं कराया जाएगा। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में, मौसम विभाग ने कहा अगले चार दिनों तक राहत के आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बेगूसराय में भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं श्री शाह ने गुजरात में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। उन्होंने अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसले, राम मंदिर का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद के खतरे से सफलतापूर्वक निपटने और देश में शांति का प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। श्री शाह ने नीतियों के ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने देश के वर्तमान तीर्थस्थलों के पुनरुद्वार के लिए श्री मोदी की सराहना की। लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से मधेपुरा समेत कोसी सीमांचल और अंग क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव के लिए दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में होने वाले नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। इन संसदीय क्षेत्रों में 84 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें 56 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं, जबकि 28 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है। दरभंगा में अब 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वहीं उजियारपुर में 13, बेगूसराय में 10, मुंगेर में 13 और समस्तीपुर में 12 उम्मीदवार शेष बच गए हैं। रद्द किए गए नामांकन पत्रों में दरभंगा के 12, उजियारपुर के 10, बेगूसराय के 4 और समस्तीपुर के 2 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण का मतदान 13 मई को होगा। उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण का मतदान 13 मई को होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा कि वोट का बहिष्कार करने वाले क्षेत्रों में दोबारा मतदान नहीं कराया जाएगा। राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारियों के उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन 2024 के शेष चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण में 11 मतदान केंद्रों पर लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वोट का बहिष्कार किया है। श्रीनिवास ने कहा कि दोनों चरणों में अब तक 17 मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। श्रीनिवास ने कहा कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार व्यवस्था करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने देश की प्रमुख समस्याओं का अस्थायी समाधान करने की कोशिश की है। श्री मोदी ने महाराष्ट्र में एक जनसभा में कहा कि देश की महिलाएं और युवा हमेशा से उनकी सरकार की प्राथमिकता रहे हैं।
एनडीए ने युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया। एनडीए ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया ताकि देश में उद्योग बढ़े। एनडीए ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया ताकि युवाओं को ज्यादा अवसर मिले। आज स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगले 5 साल में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश करेगी। साथियों, विकास में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो, इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है।
श्री मोदी ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण राशि को दोगुना करके 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन ने राष्ट्र विरोधी और घृणित राजनीति के 2 सेल्फ गोल किए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा अब मुद्दे की बात नहीं करती है।
अरे बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में हैं। अब देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी हटाना मुश्किल है, तो मोदी जी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर कई आरोप लगाए। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों की कमाई को छीनकर एक खास वर्ग में बांटना चाहती है।
क्या विचार है, क्या सोच है कांग्रेस पार्टी? जहां मोदी जी देश की व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी कांग्रेस कर रही है। देश की जनता ने अपने बाल बच्चों के लिए जो कमाया है उसको भी उसे छीन करके मुसलमानों में बांट दी।
और अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात उजियारपुर लोकसभा सीट की। उजियारपुर बिहार के उन 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
गंगा नदी से घिरा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र वर्ष 2008 में अस्तित्व में आया था। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर और 1 वैशाली जिले में है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि यहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तीसरी बार चुनावी मैदान में है। श्री राय को पिछले 2 चुनावों में इस सीट से जीत मिलती रही है। इस बार उनके सामने चुनावी मैदान में इंडी गठबंधन से राजद ने आलोक कुमार मेहता को उतारा है। श्री मेहता उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं। मुख्य मुकाबला निवर्तमान सांसद नित्यानंद राय और राजद के आलोक मेहता के बीच माना जा रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 पर भाजपा, 1 पर जदयू, 2 पर राजद और 1 सीट पर सीपीएम का कब्जा है। भाजपा प्रत्याशी जहां विकास और मोदी की गारंटी के नाम पर मतदाताओं से वोटिंग की अपील कर रहे हैं, वहीं राजद उम्मीदवार एनडीए सरकार की विफलताओं और महंगाई तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। यह देखना होगा कि इस बार भाजपा उम्मीदवार नित्यानंद राय हैट्रिक बनाने में सफल होते हैं या नहीं। आकाशवाणी समाचार के लिए उजियारपुर से मैं कृष्ण कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News पटना पर भी सुने जा सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया जिले में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अररिया एवं किशनगंज में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के शेष भागों का मौसम गर्म एवं शुष्क बने रहने की संभावना है। उष्ण दिवस औरंगाबाद, खगड़िया, जमुई, शेखपुरा, मोतिहारी एवं दरभंगा में होने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान दूसरे दिन शेखपुरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चिकित्सकों ने लोगों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ ही घर से बाहर निकलने पर छाता का उपयोग करने या सिर पर कपड़ा रखने को कहा है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से मौजूदा रबी विपणन मौसम में अब तक राज्य भर में 1000 से अधिक किसानों से 39,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। निगम ने राज्य के सभी जिलों में गेहूं अधिप्राप्ति केंद्र स्थापित किए हैं, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की खरीद हो रही है। एफसीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों से गेहूं खरीदने के बाद 48 घंटे के भीतर उसका भुगतान सीधे किसानों को उनके बैंक खाते में कर दिया जा रहा है। निगम सिक के अधिप्राप्ति के अलावा किसान राज्य में 5000 से अधिक कार्यरत केंद्रों पर गेहूं की बिक्री कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम ने बिहार में ऐसे 150 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। इनका संचालन पैक्स व्यापार मंडल, नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा किया जा रहा है। किसान किसी भी सहायता के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 110 और 1800 3456 194 पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। सरकार ने पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अगलगी और सड़क दुर्घटनाओं में 35 लोगों की मौत हो गई। रोहतास जिले में 4 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत आग की चपेट में आने से हो गई। वहीं पटना में 4, छपरा, सिवान और बेगूसराय में 3-3, बक्सर, गोपालगंज, मधुबनी और औरंगाबाद में 2-2 तथा रोहतास, हाजीपुर, अररिया, दरभंगा और पश्चिम चंपारण जिले में 1-1 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में खेली जा रही राष्ट्रीय स्कूल रग्बी अंडर 17 प्रतियोगिता में राज्य के बालक और बालिका वर्ग की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बालिका वर्ग में बिहार ने तमिलनाडु और गुजरात को तथा बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ को पराजित कर जगह बनाई है। रेल यात्रा के दौरान बच्चियों की आधे टिकट पर उसे बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। रेलवे के अनुसार रेल यात्रियों को वैकल्पिक बीमा योजना का लाभ केवल ई टिकट बुक कराने वालों को ही मिलेगा। निजी रेल बुकिंग काउंटर से खरीदे गए टिकट पर बीमा योजना लागू नहीं होगी। इसके साथ ही प्रतीक्षा सूची के यात्री बीमा योजना के पात्र नहीं होंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने जदयू के चुनावी बैठक पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, प्रदेश में हर क्षेत्र वर्ग तक पहुंचा विकास। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, अमेठी से ही उतरेंगे राहुल और रायबरेली से प्रियंका। दैनिक भास्कर की प्रमुख सुर्खी है, गया का गिरोह एटीएम क्लोनिंग में माहिर, नालंदा वाले लोन के नाम पर कर रहे ठगी। प्रभात खबर लिखता है, जीवित रिश्तेदारों को मृत बताकर 7 महिलाओं के नाम पर लिया 69,25,000 रूपये का बीमा क्लेम, एफआईआर चार्जशीट से लेकर सुलहनामा तक के दस्तावेज सब जाली। आज अखबार की बड़ी खबर है, रूस से भारत जा रहा जहाज मिसाइल के हमले से क्षतिग्रस्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जोरों से चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में नाम वापसी का कल अंतिम दिन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा, वोट का बहिष्कार करने वाले क्षेत्रों में दोबारा मतदान नहीं कराया जाएगा। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में, मौसम विभाग ने कहा अगले 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।